এই কথা শুনি মহাদের মাথা সুখ চেতনে রকা যায় কাহে কি বিষ্ম এই কথা শুনি মহাদের মা সুখ চেতনে রকা যায় কাহে কি বিষ্ম কথা শুনি মহাদের মহা সুখ চৈতন্য কৃপা যাহে তাহে কি বিষ্ম এই কথা শুনি হ্যা সমাচার শুনকর মহান্তে সবই ভক্তো কো মহা সুখ অত্যন্ত আনন্দ চৈতন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি কৃপা কৃপা যা হে জিস পর তা হে উসমে কি ক্যা বিস্ময় আশ্চর্য অনুবাদ তাৎপর্য শ্রীল প্রভুপাদ কে দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ কি যা জব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে পার্ষদগণ রূপ তথা সনাতন গোস্বামীও के कार्यों के विषय में सुनते तो वह कहते उस व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तात्पर्य सुने श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था, वे किसी एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य साहित्य की रचना करते। न केवल पुस्तकों की रचना करते अभी तो जप करते नृत्य करते कृष्ण के विषय में चर्चा करते और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करते। इस तरह वह भक्तिमय सेवा संपन्न करते। वृंदावन में प्राकृत सही जिया है तो ये कहते हैं कि पुस्तकें लिखना तो दूर पुस्तकें छूना भी निषिद्ध है। उनके लिए भक्ति का अर्थ है इन कार्यों से मुक्ति बाजाना। जब उनसे वैदिक साहित्य का पाठ सुनने को कहा जाता है तो वह ये कहकर मना करते हैं हमें दिव्य साहित्य के पढ़ने या सुनने से क्या प्रयोजन, ये तो नौ सिखियों के लिए है यानी कि नव दीक्षितों के लिए है। वह अपने आप को इतना उच्च समझते हैं कि पढ़ने लिखने तथा सुनने में वे शक्ति व्यय करना नहीं चाहते, किंतु श्री रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्तगण इस सहीजिया दर्शन को रद्द करते हैं। यह निश्चित रूप से सही बात है कि धन या यश के लिए ग्रंथ की रचना नहीं करनी चाहिए, किंतु जनता को ज्ञान देने के लिए पुस्तकें लिखना तथा छापना भगवान की वास्तविक सेवा है। यही वह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का था और उन्होंने अपने शिष्यों से पुस्तक लिखने के लिए विशेष रूप से कहा है। वे मंदिरों की स्थापना करने के स्थान पर पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद करते थे। मंदिर तो जनता तथा नौ सूक्ष्म भक्तों के लिए बनवाए जाते हैं, किंतु महान तथा क्षतिपूर्ण भक्तों का काम पुस्तकें लिखना है, उन्हें छापना तथा उनका व्यापक रूप से वितरण करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार पुस्तक वितरण बड़े मृदंग को बजाने के समान है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भामर अमृत संघ के सदस्यों से आधिकारिक पुस्तकें छापने और संसार भर में वितरित करने के लिए अनुरोध करते हैं। इस तरह श्री रूप गोस्वामी के पक्ष में पचलकर मनुष्य रूपारूप भक्त बन सकता है। ओम अज्ञान तिव्रांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तब श्री चंद्र महाप्रभु के पार्षद रूप तथा सनातन गोस्वामी के कार्य में के विषय में सुनते तो वह कहते उस शक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। हरे कृष्ण। समझ रही है, थोड़ा गले में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए इतना फ्लो में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोशिश मैं करूंगा जरूर। हरे कृष्ण। तो यहां श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि षड गोस्वामी ने विशेष रूप से यह नाम दे रहे हैं श्रीरूप गोस्वामी का और श्री सनातन गोस्वामी का। इन्होंने वृंदावन में जाकर प्रत्येक वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रंथों की रचना की। श्रीरूप गोस्वामी ने लगभग 1,00,000 श्लोकों की रचना की है और श्रीरजी गोस्वामी ने 4,00,000 से अधिक श्लोकों की रचना की है। तो ये ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को बताया था कि आप वृंदावन जाइए और क्या करिए, विग्रह की स्थापना करिए, लीला सखियों का पता लगाइए और ग्रंथों की रचना करिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट ऑर्डर है, महाप्रभु की आज्ञा है कि ग्रंथों का प्रकाशन हो, उसकी रचना हो। तो यहां पर क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनका कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। ऐसा नहीं कि वो लोई बाजार में या कोई वृंदावन के बहुत बड़े गेस्ट हाउस में रह रहे थे, है ना, और एयर कंडीशन रूम से और गद्देदार वहां पे बिस्तर थे, नहीं अटैच बाथरूम था, तो ऐसा कुछ निश्चय व्यवस्था नहीं थी। नहीं, लेकिन वहां पर क्या थे, बहुत घना घना जंगल था, वृक्ष था, और कहीं जाएंगे जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं वहां जाएंगे अगर तो वहां ठंड बहुत लगती है। नहीं, दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां वृक्ष बहुत ठंड लगती है, तो वृंदावन में उस समय क्या हाल होगा सबके लिए, कहीं ठंड ठंड के मौसम है। तो ये जो गोस्वामी गण है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी, ये सब वृक्षों के नीचे बैठकर ग्रंथों की रचना करते थे और रोज अपना स्थान बदलते रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रभुपाद कहते हैं कि आई एम ऑल्सो लाइक द सिक्स गोस्वामी। ये छह गोस्वामी जो है ये प्रत्येक दिन वृक्ष के नीचे रहते थे, अलग अलग वृक्षों के नीचे रहते थे। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भी अलग अलग मंदिरों में जाकर रहता हूं और कुछ समय के लिए रहता हूं, आप भी ज्यादा समय रहते हैं, मैं तो कुछ समय के लिए रहता हूं, और मैं क्या करता हूं, मैं भी वही करता हूं, रात्रि को बैठ के इन ग्रंथों का अनुवाद करता हूं। आई एम लाइक द सिक्स गोस्वामी वृंदावन, इसलिए प्रभुपाद ने कहा। तो इसलिए प्रभुपाद ये कहते हैं कि जब तक आप इन ग्रंथों का वितरण करते रहेंगे, इसका प्रकाश होता रहेगा, प्रभुपाद कहते हैं कि मैं जीवित रहूंगा। आप उसे कितने भर चाहते हैं कि प्रभुपाद जीवित रहे? हरे राम। तो जीवित रहने के लिए इन ग्रंथों का प्रकाशन और उसका वितरण करना भी जरूरी है। तो जितना अधिक हम प्रभुपाद के पुस्तकों का वितरण करेंगे उतना प्रभुपाद जीवित रहेंगे। जैसे कि अनंत शेष के हजारों हजारों मुख है और हजारों मुखों के द्वारा भगवान का गुणगान अनंत शेष करते हैं, इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी के हजार नहीं है, करोड़ों करोड़ों मुख हैं। क्योंकि भक्त लोग जब इन ग्रंथों को बांटते हैं तो बोलने वाले आप या मैं नहीं होते, प्रभुपाद बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी भगवान अनंत शेष के ही विस्तार है, एक तरह से एक्सपेंशन है, यानी सख्त वेश अवतार है, जो क्या कर रहे हैं, भगवान अनंत शेष का ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन केवल हजार मुख के द्वारा नहीं, करोड़ों करोड़ों मुखों के द्वारा। और कौन है वो मुख? आप सभी तो उनके मुख है, आप भी उनके मुख है। और प्रभुपाद को जब देते हैं तो प्रभुपाद को आप एक मौका दे रहे हैं प्रचार करने का, प्रभुपाद को अवसर दे रहे हैं आप प्रीचिंग करने का। और देखा जाए तो प्रभुपाद ये एक्चुअली प्रीचर है। यहां पर साफ लिखा है कि जो ग्रंथ बांधने वाले भक्त अगर ग्रंथ नहीं बांधते हैं, केवल मंदिर में ही रहते हैं, केवल घंटी बजाते रहते हैं, तो भक्ति में इतने तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमारे जो मंदिर है या आंदोलन है, ये केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है कि घंटी बजाया और भाई थोड़ा महाप्रसाद ले लिया और बस आराम से विश्राम करिए कि बस शाम को 5:30-6 बजे फिर से घंटी बजेगी प्रसाद की। इसमें श्री अकबर के बाद हम कहते थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक स्लोगन बताया दिया था, उन्होंने कहा कि स्टेइंग इन द मठ स्लीपिंग ऑन द खाट, स्टेइंग इन द मठ स्लीपिंग ऑन द खाट, यानी मठ में रह रहे हो खाट में सो रहे हैं। तो कह रहे मतलब ये जो अंदर प्रवक्ता ने शुरू किया ये एक बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन है। आज ईसाइयों का देखिए, कृष्ण मिशनरीज को देखिए, 1908 से लेकर 2015 तक आप हैरान हो जाएंगे, 1908 से लेकर 2015 तक उन्होंने 200 करोड़ बाइबल बांट दिए। गिडियंस का बाइबल है, 200 करोड़ बाइबल दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कितने लैंग्वेज, इन आई थिंक इन 100 लैंग्वेजेस, हर 100 भाषाओं में वो बांट चुके हैं पूरे विश्व में। क्या बाइबल बांट चुके कितने हैं, 200 करोड़ बाइबल, 2 बिलियन बाइबल दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। और देखिए मजे की बात, 1908 से लेकर 2002 तक 100 करोड़ बाइबल बांटे, और 2002 से लेकर 2015 तक उन्होंने केवल 13 वर्षों में 100 करोड़ बाइबल बांटे, केवल 13 वर्षों में 100 बाइबल, 100 करोड़ बाइबल। कैसे पॉसिबल है ये? तभी पॉसिबल है जब आपने मूवमेंट को आप मिशन समझ के एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम सोचेंगे भाई हमने ये सोसाइटी ज्वाइन किया है ताकि हम संसार की समस्याओं से छुटकारा पा ले, है ना, संसार में बड़ा भय है, बड़ा खतरा है। ठाकुर भक्तिबल के अनुसार ये भय के कारण जो भक्ति की जाती है ये तीसरी श्रेणी की है, ये थर्ड लेवल पर आती है, जब लोग संसार से भयभीत होकर भक्ति करने लगते हैं। एक्चुअली भक्ति होनी चाहिए किस कारण से, कर्तव्य से, या कर्तव्य प्रेम नहीं तो कम से कम कर्तव्य तो होना चाहिए, कर्तव्य के कारण होना चाहिए। और सबसे बढ़िया क्या है, प्रेम के कारण। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय में, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भजन करता है, वन वश से लव डिवोशन, प्रीति पूर्वक जो भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूं। सबको बुद्धि नहीं देता भगवान, किसको बुद्धि देते हैं, जो प्रीति पूर्वक भजन करता है उसको भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं, जिसके द्वारा वो बुद्धि शोषण कर सके, ग्रंथों का वितरण कर सके, यानी कि मेरे पास आ सके सेवा के माध्यम से। इसलिए सेवा ही वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने वाली है, और कोई माध्यम नहीं है भगवान को प्रसन्न करने का, सेवा ही माध्यम है। और सेवा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग सभी जीवात्माओं को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। हम जब सेवा करेंगे तभी तो लोग भी सेवा करेंगे। प्रभुपाद जब यहां से गए, अमेरिका गए, तो प्रभुपाद ने केवल यही सोचा था कि भगवान जाके ब्रह्मचारी और सन्यासी बनाऊंगा। भक्ति चारू हमारा बता रहे थे, प्रभुपाद ने बोला मैं आई वेंट टू अमेरिका टू मेक ब्रह्मचारी एंड सन्यासी, पर वहां जाके मैंने देखा जो हाल है उन लोगों का, उसको देखकर मैंने विचार बदल दिया। लेकिन प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे जयप्रता गोस्वामी महाराज के साथ एक चर्च के घर से, और वो चर्च खाली था। प्रभुपाद ने कहा हमारा भविष्य में हमारा जो आंदोलन है बिल्कुल ऐसा ही होगा, टेम्पल्स हमारे खाली होंगे लेकिन बाहर हजारों हजारों लाखों की तादाद में भक्त होंगे आउटसाइड द टेम्पल। तो ये ना सोचिए कि हम गृहस्थ हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना समय भी नहीं है, हमें इतना क्यों जोर दिया जा रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है, ऑफिस का भी प्रेशर है, बॉस का भी प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, हर तरह का प्रेशर है, और जब मंदिर आते हैं तो भक्तों का प्रेशर है, हम तो पिस जाएंगे पूरे पंचर जाएंगे। तो याद रखिए कि चावल जो है पकता किसमें है, चावल किसमें पकता है बताइए, आपके घर में पकता है लेकिन किसमें, प्रेशर कुकर में। जब प्रेशर कुकर में चावल पकता है तो पक जाता है। तो इसी तरह से भक्त भी इसी तरह से पकते हैं, तपस्या की अग्नि में, त्याग की अग्नि में, समर्पण की अग्नि में भक्त पकते हैं। केवल एक जगह बैठ के गर्म गर्म कपड़े पैट के बैठना उससे हम लोग पकते नहीं है, बल्कि हम क्या जाते हैं, जम जाते हैं, गिर जाते हैं, ठंडे बन जाते हैं कृष्ण भावना में। तो कृष्ण भावना की जो अग्नि है उसको जलने दे दिए, बुझाइए मत ठंडक से। और ताप की जब अग्नि होगी, तपस्या की अग्नि होगी, त्याग की अग्नि होगी, समर्पण की अग्नि होगी, अरे कृष्ण के लिए कुछ करके जाए जीवन में, जब ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, नहीं बहुत कुछ कर लिया, कई जीवनों में हम यही करते रहे हैं, कई जन्मों से हम यही करते रहे, खाना सोना बचाव करना भोग करना। अब आगे इस में हम लोग बहुत जन्म न बनते, बहुत जन्मों के बाद हम लोग कृष्ण की सेवा में आए हैं, अगर इस अभी भी हमने इसका लाभ नहीं उठाया तो लालच है। अरे बाहर वाले भक्ति में नहीं लग रहे हैं, वो बात सही है कि वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो कृष्ण भक्त बनने के बाद भी इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं कि हमें मौका दे रहे हैं ठाकुर जी, कृष्ण हमें मौका दे रहे हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति में मौका दे रहे हैं कि हम तपस्या का जीवन बिता सके, वैराग्य का जीवन बिता सके, केवल घंटी ना बजाए। हर घर में लड्डू गोपाल है, लेकिन हर घर में प्रभुपाद की बुक्स भी होनी चाहिए। लड्डू गोपाल से क्या होगा, लड्डू गोपाल से आपका क्या संबंध है? आपका संबंध केवल गुरु परंपरा से है। सबसे पहले हमारी प्रार्थना कोई भी सुन रहा है, ठाकुर जी के सामने अगरबत्ती दिखाते रहिए करोड़ों वर्ष, लेकिन जब तक हम गुरु परंपरा को पसंद नहीं करेंगे ठाकुर जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनने वाले हैं। हमारी प्रार्थना गुरुदेव के पास ही, गुरु वैष्णव के पास ही जाती है, उससे आगे पहुंचती नहीं है, पहुंचाने वाले वो हैं। हम सोचेंगे हम बहुत सारी सूफी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट कौन कर रहा है वो देख रहा है। तो ये स्वीकार कब किया जाता है, इस प्रार्थना को स्वीकार किया कब जाता है, ये हमारे हमारे जीवन में समर्पण होता है। समर्पण जहां होता है वहां प्रार्थनाएं सुनी जाती है, जहां समर्पण नहीं होता है वहां कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। और यही वास्तव इंडियन लॉ का भी जो है ये सिस्टम है कि कोर्ट में जाके आप जब प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, शरणागत होते हैं तो आपका पनिशमेंट कम हो जाता है, राइट? लेकिन आप भाग जाते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं और अपनी चोरी को छुपाते हैं तो बहुत ज्यादा दंड मिलता है उसके लिए। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं मासाना मार्ग शिशु हम, दसवें अध्याय का श्लोक संख्या 35 भगवान कह रहे हैं मासाना मार्ग शिशु हम वॉट ऑफ द मंथ्स एंड नवंबर एंड दिसंबर। क्या मतलब इसका, नवंबर में हो गया कार्तिक मास, अब दिसंबर में बुक मैराथन। भगवान बता रहे गीता में कि नवंबर में मैं कार्तिक हूं और दिसंबर में मैं बुक मैराथन हूं। इसका नाम उठाइए, प्रमाण है हमारे पास, शास्त्र का प्रमाण है, और से बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। तो प्रभुपाद ने जो ये इतना कष्ट उठाया है, अमेरिका गए हमारे लिए, इसलिए नहीं कि हम यहां पर कार्पेट के ऊपर बैठ जाए या चटाई के ऊपर बैठ जाए, कार्पेट नहीं है तो चटाई के ऊपर बैठ जाए और कोसी इन्वार में बैठ के हम लेक्चर सुने या लेक्चर दें। बड़ा आसान है ये करना, प्रवचन देना और सुनना बड़ा आसान है, सड़क पर जाके धुएं खा के ग्रंथ बांटना बड़ा मुश्किल है। वही हमें से कोई करना नहीं चाहता है, ये माइक बड़ा अच्छा लगता है सबको, व्यासासन भी हम सबको अच्छा लगता है और सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी नींद भी आती है यहां पर, लेकिन सड़क में सारी नींद उड़ जाती है हमारी, सारी नींद उड़ जाती है, होश आवास उड़ जाता है। वहां पर सवाल जो होता है एक ही होता है सवाल कि क्या मैं ग्रंथों को बांट पाऊंगा। एक भक्त है बेचारे, वो जाते थे ग्रंथों को बांटने के लिए, उनके हाथ में 10 किताबें थी, वो हमेशा 10-10 किताबें लेकर 10-10 गीता लेके चलते थे और गाड़ियों को रोकते थे, ले लो ले लो ले लो ले लो, जैसे बोलते हैं हम सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, ले लो ले लो, गीता जयंती है, ले लो ले लो। वो एक लड़की को देना चाह रहे थे, वो लड़की बोली मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज ले लो ले लो, नहीं तो मंदिर मंदिर में मुझे घुसने नहीं देंगे, प्लीज ले लो, मैं इस मंदिर में घुसने नहीं देंगे, प्लीज आप ले लीजिए गीता ले लीजिए। ठीक है कितने का है, तुमने ले लिया गीता, 10 किताब ले ली उस लड़की ने, और उसके बाद फिर वो रस्ते में एक एक गीता करके दे दी गई, ठीक है, और एक गीता उसने अकेले में ली और घर चली गई। घर में उसके जो पिता थे वो नास्तिक थे, हिरण्यकश्यपु के ही अवतार थे, और उन्होंने जैसी देखी क्या लेके आई हो बेटी, मैं गीता लेके आई हूं, भक्त ने दे दिया, वाह क्या बात है, हमारे होते हैं आप गीता लेके आएंगे घर पर, थैंक यू। उठा के बालकनी से फेंका और नीचे लोग खेल रहे थे, आजकल वो एक नया स्पोर्ट्स आप बता रहे हैं हमें, कि वो नेट होता है और नेट के ऊपर लोग उछलते रहते हैं, होता है ऐसे कुछ, एक नेट होता है और उसके अंदर डाल दिया जाता है तो आप उछलते रहोगे, ऐसे होता है ऐसा कुछ, तो उछलते रहते हैं, तो गीता आके उस नेट में आके गिरी। अब क्योंकि लोग उछल रहे थे तो नेट भी उछल रहा था, तो उछला उछला जोर से गीता भी उछली, उछल के एक वो घर में जाके गिरी गीता, और वहां पर एक व्यक्ति जो है प्रार्थना कर रहा था, हमारी खुदाई गिर कर आया था, बड़ा दुखी था संसार के कष्ट, संसार से बड़ा दुखी था, प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, क्या होगा मेरा, ऐसे हाथ जोड़ के वो प्रार्थना कर रहा था, वो गीता उसके गोदी में आके गिरी। अरे ये कहां से आया, अरे वाह भगवान ने मेरी सुन ली, ऊपर से आई गीता, कोई है ही नहीं ऊपर से फेंकने वाला, शायद मेरे लिए गीता भगवान ने भेजी है। कौन सा किताब, श्री भरत भगवद गीता यथारूप हिजवान वेदी भक्ति वेदान स्वामी प्रभुपाद, और गीता को पढ़ना शुरू किया उस व्यक्ति ने और वो भक्त बन गया।
اس نے پروگرام کیا گھر میں ایک فنکشن کیا اور فنکشن میں پڑوسیوں کو بلایا تو یہ لڑکی جو گیتا لے کر آئی تھی رائٹ اور جس کے ہاتھ سے ان کے پتا جو رسول تھے انہوں نے چھین لیا تھا وہ بھی فنکشن میں آئے تھے پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایسی گیتا ملی ہے میں پرارتھنا کر رہا تھا اور اوپر سے بھگوان نے مجھے گیتا بھیج دی میرے گھر میں اپنی گیتا گری والی اچھا او ارے گئے ارے بھگوان نے بھیجی ہے گیتا آپ کے لیے میں نے اٹھا کے بالکنی میں پھینکا تھا وہ نیچے نیٹ پہ گرا ہوگا آپ کے اوپر آ کے گر گیا پھر یہ وہ گیتا ہے اچھا یہ بات ہے تو دیکھیے پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا اور بیٹی کے پربھاؤ سے ان کے جو پتا ہیں وہ بھی بہت بن گئے یہ پروپالی کے گرنتھوں کا کمال ہے کیا میجک ہے دیکھیے پروپالی ایک دم سے کاریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیوت ہو جاتا ہے ایک دم سے سب کے لیے کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں یہ جڑ وسو نہیں ہے یہ جڑ وسو نہیں ہے یاد رکھیے یہ قیدی ہو ایک سینک ہوتا ہے مان لیجیے دیش میں جو ہے بہت سمسیاں آ گئی ہیں دیش میں جو ہے اکال آ گیا ہے یا باڑھ آ گئی ہے اور کھانے پینے کے سامان جو ہے مل نہیں رہے ہیں اور فصل ٹھیک سے اگ نہیں رہی ہے دھن راشی کی بڑی کمی ہو گئی ہے سرکار کو دیش میں جو ہے بہت ہی کلہ مچا ہوا ہے لیکن بارڈر میں لداخ میں یا پاکستان کے بارڈر میں ہمارے سینک کھڑے ہوئے ہیں دیش کی رکشا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے سرکار کیا کرے گی آپ کو کھلائے گی یا سینکوں کو دے گی بتائیے کیوں ہاں دیش کی رکشا کیوں کر کیسے کر رہے ہیں خطرہ مول لے کر کتنا بار رسک لے رہے ہیں ان کے جان جو ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے ان کے جان خطرے میں ہیں وہ خطرہ مول لے کر جو ہے بارڈر میں جا کر کیا کر رہے ہیں دیش کی رکشا کر رہے ہیں اسی طرح سے یا کرشن کے بھکت جو ہے وہ خطرہ مول لیتے ہیں رسک لیتے ہیں تپسیا کرتے ہیں ویراٹ کا جیون بتاتے ہیں اور کرشن کی سیوا کے لیے کہیں بھی جانے کے تیار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے بھگوان کس کی رکشا کریں گے ان کی جو ہے چٹائی میں بیٹھے ہیں یا ان کی جو سڑک پہ جا کے سڑک پہ کشٹ اٹھا کر گرد بانٹ رہے ہیں بتائیے کس کی رکشا کریں گے بھگوان بول ہی نہیں آپ جیسے کسی پتا نہیں آپ خطرے میں نہیں اس لیے بول ہی رہا بولیے کس کی رکشا کریں گے ٹھیک ٹھاکر جی جو گرنتھوں کا وچن کر رہا ہے کیوں کیونکہ وہ رسک لے رہا ہے وہاں گاڑیاں سن رہا ہے سڑک میں دھواں کھا رہا ہے ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے پیچھے سے کوئی بھی گاڑی ٹرک گاڑی کار کوئی بھی مار سکتا ہے کوئی بھی اس کو اڑا کے پھینک سکتا ہے لیکن بھکت یہ رسک لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کرشن کا دھیان ٹیمپل ہال میں بیٹھے بھکتوں کے اوپر نہیں ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے اس بھکت کو بھگوان دیکھتے ہیں اسی آلٹر سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرا بھکت جو ہے میرے پرسنتا کے لیے کتنا کشٹ اٹھا رہا ہے اس کو سب سے پہلے کرپا ملتی ہے اس لیے پروپر فور کے اندر بھاگوتم کے پرپور میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں دا لارڈ وانٹس ٹو سی ہاؤ مچ یو آر پینس ٹیکنگ ان ڈیووشنل سروس بھگوان دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی سیوا کے لیے کتنا کچھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں اس لیے ہمیں سویدھا کے زون سے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا کیا کیجیے رجائیوں کو اور گدوں کو یہ رجائی گدا اور ایئر کنڈیشن اور ہیٹر یہ بھکتی کے لیے بہت ہی ہانیکارک ہے اٹس انجینئرس ٹو یور اسپرچل ہیلتھ خاص کر دسمبر کے مہینے میں خاص کر ٹھنڈ کے مہینے میں بہت گرمی کے موسم میں تو ویسے ہی آپ یوز نہیں کریں گے تو اس لیے گرمی کے موسم میں پھر ایئر کنڈیشن بھی ہوگا وہ بھی دشمن ہے آپ کے لیے یہ سب دشمن ہے اس لیے انٹرنیٹ کو تیاگیے فیس بک کو تیاگیے سب کو تیاگ دیے اسمارٹ فون کو بھی تیاگیے کیول ایک ہی چیز اپنائیے اور وہ ہے پروپر گرنتھ ہاں اگر پروپر جی گرنتھ ہوں گے تو ویسے آپ کا آپ کا جو سمپرک ہو جائے گا کرشن سے آپ کا کانٹیکٹ ہو جائے گا کرشن سے اور آپ کا چہرہ بھگوان کو نظر آئے گا یہ اصلی فیس بک ہے اور ان فیس بک کی آوشیکتا نہیں ہے بھگوان آپ کا چہرہ دیکھیں گے اپنے فیس بک میں گولوک دھام وردھان بیٹھے ہوئے یہ ہے وہ بھکت میرا جو میری پرسنتا کے لیے در در بھٹک رہا ہے گرنتھوں کا وچن کر رہا ہے تو آپ سوچیے بات یہ گوسوامی لوگ جو ہیں یہ پاگل نہیں تھے کہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر جو ہے گرنتھ لکھ رہے تھے نہیں اور پروپاد نے کیا کیا انہی گوسوامی گرنتھوں کو جو ہے بڑی آسان طریقے سے بہت سرل طریقے سے تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں ہم جیسے جو اشکشت لوگ ہیں یا مورکھ لوگ ہیں کلیوگ کے الپ بدھی والے لوگ ہیں وہ ان گرنتھوں کو پڑھ کر بڑی آسانی سے سمجھ سکیں کہ بھگوان کا سندیش کیا ہے نہیں تو کہاں سمجھنے والے گوسوامی گرنتھ پڑھ کے دیکھیں جی گوسوامی کی سنسکرت ہے سنسکرت تو سمجھ آئے گی پہلی بات اور پڑھ کے دیکھیں تو کچھ دماغ کو گھسے گا نہیں پروپر کے گرنتھ نہ پڑھے ہو اور اگر آپ گوسوامی گرنتھ پڑھنے کا کوشش کریں گے تو آپ کا ایک شبد بھی نہیں سمجھ میں آئے گا یہ پروپر جی کا ہت کی کرپا ہے پر प्रभुपाद से पूछा एक बार कि आप ये जो ग्रंथ अनुवाद कर रहे हैं बड़ा मुश्किल कार्य होगा. प्रभुपाद ने कहा नहीं, इट्स वेरी इजी, लेकिन मैं ये देखता हूं कि कैसे मैं इसको प्रेजेंट करूं ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी जो है, एक ऑर्डिनरी आदमी भी इसको समझ सके. इसलिए ये मेरा चैलेंज होता है ट्रांसलेशन करते हुए. अगर ट्रांसलेट करना मेरे लिए जो है कठिन कार्य नहीं है. तो प्रभुपाद ने बहुत कष्ट उठाया है. ऑर्डिनरी बात नहीं है ये. प्रभुपाद जी जो ग्रंथों का अनुवाद कर रहे हैं और इंटरनेशनली मूवमेंट चला रहे हैं तो प्रभुपाद की तपस्या का फल है. और इतने सारे मंदिर हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि आप उत्साहित रहते हैं ग्रंथों का उत्तर करने के लिए. इस यज्ञ के कारण ही, इस यज्ञ के कारण ही दिल्ली में इतने सारे मंदिर बन रहे हैं. इसका कोई और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है. क्या कारण है कितने सारे मंदिर बन पा रहे हैं? बिकॉज आप ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ग्रंथों का वितरण जो है सबसे बड़ा यज्ञ है. ये संकीर्तन यज्ञ है. यज्ञ जब होता है तो यज्ञ का फल भी मिलता है, और जब संकीर्तन अच्छी तरह से करते हैं तो ठाकुर जी अपने आप प्रकट हो जाते हैं, मंदिर का निर्माण अपने आप होने लगता है. क्योंकि मंदिर बनाने का जो उद्देश्य है, मंदिर बनाने का जो पर्पस है वो क्या है? प्रचार है, और कोई पर्पस नहीं है. इसे प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं कि नए नवीन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए जो पहली बार दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन जो भक्त बन गए हैं वो उसके अंदर ना घूमे केवल. उनका कार्य क्या है? भागवत विधि को बढ़ावा देना, भागवत विधि का सहारा लेना. क्योंकि हमेशा याद रखेगा भागवत विधि जो है वो पांचाधुरी विधि को हमेशा सुपरसीड करेगी. भागवत विधि जो है, भागवत का जो प्रोसेस है वो हमेशा जो है हर प्रोसेस में रहता है पांचाधुरी विधि से. तो इसलिए एक बहुत ही आवश्यक है कि हम इस प्रोसेस को बड़ी गंभीरता से अपना है. ग्रंथों के वितरण, हमें एक स्टोरी याद आ रही है. जैसे एक बार एक भक्त थे, भक्त नहीं थे पहले, तो उनका बिजनेस था बैटरी का बिजनेस था. और एक बार उन्होंने सुना कुछ लोगों से कि इस्कॉन में विदेशी कन्याएं बहुत सारी आती हैं, और वो बेचारे आपकी तरह यंग थे, यंगस्टर थे, कोई यूथ फॉरम के नहीं थे उस समय, बाहर से आते थे. तो उनकी इच्छा हुई कि हम भी कुछ फॉरमर्स को देखने जाए, खासकर युवा जो कन्याएं हैं, युवतियों को देखने की बड़ी इच्छा हो रही थी. और इस उद्देश्य से वो बहुत थे ग्रेटर क्लास टेम्पल 1985 की बात है, हम भी नहीं थे उस समय, उन्होंने बताया हमें. तो 1985 वहां पहुंचे, और वहां पे दिसंबर का महीना था, और एक भक्त पीछे पड़ गया. वो छोटी किताब थी, कोई 5 या 10 रुपए की. तो वो किताब लेके पीछे पड़ गया, ले लो, दिसंबर का महीना है, गीता जयंती है, इसमें गीता की सारी शिक्षाएं भी उसका सार है, ले लो. क्यों पीछे पड़ गया ये, पता नहीं क्या परेशान कर रहा हमने. मैं तो हैरान हूं कुछ और देखने के लिए. ये पीछे पड़ गया, कितने का है? 5 रुपया. ले लो 5 रुपया, दिसंबर तक जाओ यहां से. तो वो लाए घर, किताब लेके आए. वो किताब ला के उन्होंने फैक्ट्री में, और बुक रैक था, उन बुक रैक में एक बैटरी का ही रैक था, और रैक के ऊपर रख दिया उन्होंने. और कई सालों तक धूल जमती रही किताब में, और लेकिन उनको बहुत बुरी आदतें भी लगी हुई थी. ये शराब पीकर घर आते थे रात को, घर में रात को शराब पी के आते थे, चिल्लाते थे, झगड़ा करते थे, पेरेंट्स बड़े परेशान थे, बहुत दुखी थे माता पिता इनके. और ये रोज चिल्लाना, झगड़ा करना, शराब पी के आना, उल्टी करना वगैरह वगैरह. तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनका बिजनेस डाउन हो गया, काफी बड़ा लॉस हुआ उनको, काफी उनको लॉस हुआ, नुकसान हुआ. और वे क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा. और जितने बची हुई बैटरियां थी वो सब दे दिया उन्होंने, और बेच दिया, फैक्ट्री को बेचने लगे. फिर उसी रैक तक पहुंचे जहां पर वो किताब रखी हुई थी प्रभुपाद की, और किताब को खोल के देखा उन्होंने, उस भक्त ने. उस किताब में प्रभुपाद लिखते हैं, दीज बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब, एनी टाइम इट कैन एक्सप्लोड. प्रभुपाद कहते हैं कि ये विस्फोट, ये टाइम बॉम्ब के समान है, कभी भी विस्फोट हो सकता है. और विस्फोट हो गया, और उन्होंने वो जब लाइन पढ़ा तो उनका जो है क्या हुआ, जीवन बदल गया, केवल एक प्रभुपाद की एक लाइन पढ़ने से. उनका हाथ चेंज हो गया, और घर गए, उन्हें पूरी किताब पढ़ डाली, और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें सारी किताब पढ़ डाली और भक्त बन गए. दिस इज अ मिरेकल. ये है जादू प्रभुपाद की किताबों का, कि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है प्रभुपाद के ग्रंथों की कृपा से, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन हमारा देखिए कन्विक्शन होना चाहिए सबसे पहले. देखिए समस्या क्या है, आप उसे बताएं, हमें विश्वास नहीं है. हम सोचते हैं ग्रंथ इतने बांट दिए हैं, हर साल जो है प्रभु जी हमें पुश करते हैं, 2 लाख 3 लाख जो भी गीता बांट रहे हैं उसके कितने कितने भाग बन गए, कितने भाग बना दिया हमने बताइए. लेकिन याद रखिए गीता का उपदेश, गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म के अधिकार उससे माँ फलेश प्रदार्थना, हमें केवल सेवा का अधिकार है, फल का कोई भी अधिकार नहीं है। वो खट्टा निकलेगा या मीठा निकलेगा उसके ऊपर भी कोई अधिकार नहीं है। आप केवल बीज बोइए और लैंड को कल्टिवेट करिए, पानी दीजिए, हवा दीजिए, धूप दीजिए, ये हमारा काम है। सेवा ही हमारा अधिकार है, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारी सारी सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी गुरु परंपरा को खुश करें, बस। और कोई नहीं होता है रिजल्ट, यही रिजल्ट होता है। भले आप करोड़ रुपए कमा लो, करोड़ों घर से बांट लो, लेकिन आपके अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता है। इसे जो भी हम प्रयास करते हैं उसके द्वारा गुरु परंपरा पसंद होनी चाहिए, भले क्या बर्तन साफ करना हो। याद रखिएगा, एक बार दो साइंटिस्ट थे, वो ज्वाइन किए थे, एक साइंटिस्ट ज्वाइन किया था, दो साइंटिस्ट वाले फ्रेंड्स हैं, उसने एक वैज्ञानिक ज्वाइन किया, और एज यूजुअल प्रभुपाद ने कहा ठीक है, इनको लगाओ बर्तन सफाई करवाओ, टॉयलेट साफ करें, ट्रेनिंग में डालो उनको। साइंटिस्ट हैं वो, बहुत बड़े, उनको बर्तन साफ करना पड़ा, टॉयलेट साफ करना पड़ा। तो उनका एक मित्र आया साइंटिस्ट दूसरा आया, उसने कहा कि स्वामी जी आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन, ही सच अ बिग साइंटिस्ट और ही वॉशिंग पॉट्स भी थे, तो आपको इसका पूरा जीवन खराब कर दिया, नहीं बर्तन धो रहा है, क्या नहीं कर सकता था यह संसार के लिए। प्रभुपाद ने कहा ही इज वॉशिंग द पॉट्स, ये बर्तन धो रहा है, धोते धोते क्या करेगा, इसी बर्तन में छेद कर देगा, इतना धोएगा कि बर्तन में छेद हो जाएगा, उस छेद में ये गो बैक होम बैक टू वर्ल्ड। प्रभुपाद ने कहा उसी छेद को धाम चला जाएगा, तुम तो यही ले जाओगे। अरे साइंटिस्ट होने का फायदा क्या, जब नदी में तैरना नहीं आते आप, स्टोरी तो सुनिए आपने, यानी कि बहुत सागर अगर पार करना नहीं जानते आप तो वैज्ञानिक होने का क्या लाभ है, एक बकवास है। आजकल की शिक्षा देखिए, जो प्रणाली हमारी एजुकेशन सिस्टम है, इतना थर्ड क्लास है कि है थर्ड क्लास, क्योंकि यह वास्तव एजुकेशन सिस्टम जो है मनुष्य भी नहीं बनाना है। अगर मनुष्य बनाए चलो ठीक है, फिर भी धन्यवाद देंगे उनको, अरे मनुष्य तो बनाओ कम से कम। 1989 की बात है जब हमने आखिरी बार हमने टीवी देखा था, उसके बाद प्रभुपाद की कृपा हो गई। 1989 में हमने देखा दूरदर्शन वन, डीडी वन, एक ही था, वन कोई वन ही था उस समय, टू तो था ही नहीं। तो उसमें समाचार आता था, एक आता था कृषि कार्यक्रम, एक आता था हफ्ते में चित्रहार, और एक हफ्ते में आता था कोई मूवी, संडे के दिन लोग बैठ के देखते थे घर में सब। उसके अलावा सब और कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, कोई चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, चलो उसी से जाए टाइम बिताओ अपना जो भी है इस भारत देश में। तो फिर भी जो है देश में थोड़ी बहुत सफलता बन गई थी। और उस समाचार में हमने क्या सुना, उस समाचार में सुना कि भारत में सबसे अधिक नशा करने वाले भारत के ही सारे विश्वविद्यालयों में हैं, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं मुंबई, चेन्नई, और उसके बाद उन्होंने बताया कोलकाता, इलाहाबाद, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं भारत के और दिल्ली। फिर उन्होंने बताया इन विश्वविद्यालयों में लेकिन सबसे अधिक नशा करने वाले कहां जाते हैं, दिल्ली में है। और दिल्ली में भी कहां पर है सबसे ज्यादा नशा करने वाले, दिल्ली विश्वविद्यालय में है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कहां सबसे ज्यादा नशा करते हैं, नॉर्थ कैंपस में है। तो एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपका एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन क्या बना रहा है, मॉडर्न एजुकेशन केवल आपको ड्रग एडिक्ट बना रहा है, बस हिप्पी बना रहे हैं लोग, इंडिया के हिप्पीज है, इंडियन हिप्पीज। इसलिए सारा का सारा जो है पढ़ाई लिखाई जितना भी होता है सबका सब खराब हो जाता है, बिल्कुल रद्दी में जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर पाता है। कोई वैल्यूज नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं लग गई है, कोई नैतिकता नहीं लग गई है, केवल किताब पढ़ो और एग्जामिनेशन पास करो और हाथ में डिग्री ले लो और गलत गलत दवाइयां दे दो और गलत डायग्नोसिस करो, बुरा नाम है। इसलिए समाज में उत्पाद बढ़ गया है, उत्पाद बढ़ गया, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रि के विधि बना आईकान देखिए हर भक्ति उत्पाद आएगा गलपते, समाज में उत्पाद बढ़ गया है। लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन चरित्र बन नहीं पा रहा है, जानते नहीं है कि माता पिता कौन होते हैं, भाई बंधु कौन होते हैं, परिवार में कोई संबंध नहीं रहा है, कोई कल्चर नहीं रहा है, बिल्कुल सब खत्म होता जा रहा है, बुरा मत मानिएगा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्मार्टफोन लेके बैठे हुए हैं, फेसबुक पे लेके बैठे हुए, अरे कहां गया वो जमाना जब नानी सुनाया करती थी भागवत और रामायण और महाभारत की कथाएं बच्चों को, अपने पोतों को और पोतियों को। अब हम हाथ में सबसे पहले स्मार्टफोन का पकड़ाते हैं, देखिए हमारा बच्चा मौन हो गया है, केवल 8-10 साल का है लेकिन क्या कंप्यूटर चलाता है, उसे बड़ा गर्व हो रहा है। एक बार अक्षरधाम में गए थे हम लोग, वहां पे उसका म्यूजियम देख रहे, बड़ा अच्छा म्यूजियम है उनका भी, तो एक सेक्शन है कलयुग का, कलयुग का परिवार, तो उसने दिखाया है कलयुग का परिवार, दिखाया है कि मियां बीवी झगड़ा कर रहे हैं और छोटा सा बच्चा है, पांच छह साल का होगा शायद, छोटा बच्चा है बहुत, और चश्मा पहन लिया उसने, चश्मा पहन के कंप्यूटर के सामने बैठा है और मियां बीवी झगड़ा कर रहे हैं और पड़ोसी देख रहे हैं क्या घर में झगड़ा। यही हालत है हर परिवार में, हर घर में यही है। तो इसलिए ये सब देने वाले कौन है? हम हैं, हम ही देने वाले हैं इनको कंप्यूटर, हम ही देने वाले हैं इनको स्मार्टफोन। एक बच्ची का हमने देखा था यूट्यूब में, दिखाया एक भक्त ने, एक 10-12 साल की लड़की होगी, वो हॉस्पिटल में ले रही है, कांप रही है, उसका हाथ कांप रहा है, पांव कांप रहा है, जानते क्या हो उसको, उसका मेंटल प्रॉब्लम हो गया और हैवी रेडिएशन के कारण क्या हो गया, पार्किंसन हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज कर रही थी वो लड़की, छोटी सी बच्ची, केवल 10-12 साल की होगी और हॉस्पिटलाइज होगी और ब्रेन जो है डिलेज हो गया, और ब्रेन का जब ऑपरेशन किया गया तो इतना सारा काला काला गंध निकला ब्रेन के अंदर से, रेडिएशन के कारण ये हालत हो गई। आप सोचिए कि हमारे साथ नहीं होगा, हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, अमेरिका में स्मार्टफोन यूज करके अधिकांश लोगों को वहां पे पार्किंसन हो रहा है, पार्किंसन डिजीज का मतलब होता है जिसमें हाथ कांपता रहता है, ऐसे ऐसे अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और इसलिए वहां कह रहे हैं अमेरिका में ग्लव्स इंट्रोड्यूस किया है जो उंगलियों में पहनना पड़ता है, आने वाले इंडिया में भी वो ग्लव्स पहन के स्मार्टफोन यूज करिए, स्मार्टफोन ही छोड़ेंगे लेकिन कुछ लोगों की व्यवस्था करेंगे उसके लिए। यह हालत, और ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा और लोग जो है कलयुग में घुसा रहे, बहुत बुरा हाल है। तो इस वजह से क्या है कि अगर ये असली ज्ञान नहीं दिया गया जो भगवदगीता में है, इस शास्त्रों में है, तो ये संसार जो है खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इंडिया में खत्म हो गए, क्योंकि इंडिया के पास ये धन है, धन होते हुए भी, आध्यात्मिक ज्ञान होते हुए भी अगर हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो लागत है, हम सबको सबसे ज्यादा जो है कष्ट पाना होगा, हमको सबसे ज्यादा कष्ट पाना पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति लर्नर्स लाइसेंस होता है तो उसको इतना धन नहीं मिलता, जबकि जिसका पक्का लाइसेंस होता है उसको सबसे ज्यादा धन मिलता है, राइट। इसी तरह से हमारे पास ये ज्ञान है भगवदगीता का, अगर इसका वितरण नहीं करेंगे तो दोष हमें लगेगा, उनको नहीं लगेगा, राइट। कई बार भक्तों को संशय रहता है कोई भार बहुत माया है, रजोगुण है, तमोगुण है, हम जाएंगे ग्रंथों का वितरण करने के लिए, माया हमें प्रभावित करेगी। प्रभुपाद से पूछा है क्वेश्चन, प्रभुपाद से मॉर्निंग वॉक में कन्वर्सेशन में प्रभुपाद के आवाज में हमने सुना, प्रभुपाद कहते हैं दोष वार संकीर्तन माया के नॉट टच, प्रभुपाद कह रहे हैं जो संकीर्तन कर रहे हैं अगर आप तो माया आपको छू नहीं सकती है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं द डॉक्टर्स इन्फेक्टेड, हाउ कैन यू ट्रीट द पेशेंट्स, अगर डॉक्टर ही स्वयं इन्फेक्टेड है, बीमार है, तो कैसे इलाज करेगा मरीजों का। प्रभुपाद कहते हैं जो ग्रंथों का वितरण जब कोई कर रहा होता है तो माया आसपास भी नहीं भटक सकती है उस वक्त में। इस बात पर हमें विश्वास होना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि भगवान गीता में बोले संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय होता है जो डाउटिंग सोल, उसका ना इस लोक में ना परलोक में कहीं भी वो सुखी नहीं रह सकता, ना सिद्धि में वापस न सुखम न परम गति, यह शास्त्र विधि मुसृज्य, जो शास्त्रों की अवेदना करता है उसको तो कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा, संगति नहीं मिलेगी, तड़पता रहेगा वो संसार में, वापस आना पड़ेगा पूर्व मनुष्य का भवा। इसलिए प्रभुपाल चाहते थे कि हम इस समाज में इस संस्था में ब्राह्मण बनाए, और ब्राह्मण का सबसे बड़ा कार्य होता है ज्ञान का वितरण। अगर ब्राह्मण ज्ञान का वितरण नहीं करेगा तो शूद्र करेंगे क्या, वैश्य करेंगे क्या, क्षत्रिय करेंगे क्या, ये ब्राह्मण का कार्य है, और प्रभुपाल ने संस्था बनाई है अधिक से अधिक ब्राह्मण बनाने के लिए। इसलिए हमें जाना चाहिए, प्रभुपाल धारण देते हैं घड़े में पानी भरा हो और उसको छेद कर दिया जाए वो सारा का सारा पानी घड़े से निकल जाता है। इसी तरह से अगर ज्ञान होगा अगर हमारे पास, उस ज्ञान का वितरण नहीं करेंगे तो ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, हमारा ज्ञान हमारे दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए भी, अरे किताबें बटे ना बटे, भक्त बने ना बने, ये याद रखिएगा, ग्रंथों का वितरण करते रहेंगे तो हम बच जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम धर्म भगवान के धाम चले जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला द हाइएस्ट प्रिंसिपल इज टू सेव वनसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि सबसे ऊंचा सिद्धांत क्या है, कृष्ण भावना में अपने आप को बचाना। और कैसे बचा सकते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, और ये मत सोचिए कि प्रभु जी हमारी साधना का क्या हो, अरे यही साधना है, संकीर्तन ही साधना है कलयुग में, और कोई साधना नहीं है, बाकी सारी जितनी भी साधना है वो संकीर्तन को एसिस्ट करने के लिए है, ऐसा मत है श्री जीव गोस्वामी का, जो उन्होंने बताया है भक्ति संदर्भ में। जीव गोस्वामी का कहना है कि और साधना को तभी साधना कहा जा सकता है जब वो संकीर्तन को फैसिलिटेट करे, तो ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद चाहते थे, एक भक्ति कथा बताते हैं आपको, शायद सुना होगा कि आप लोगों ने, तो एक भक्त है, एक लेडी थी, तो लेडी बाहर गई और लेडी को किसी भक्त ने जो है बुक दिया, उस बुक का नाम था ईशो प्रिशन। पहले तो बुक ले नहीं रही थी वो, लेकिन ईशो प्रिशन ने फ्रंट पे दिखाया तो उसने भगवान विष्णु का, नारायण का चित्र है, बहुत सारे वो है फन है, अनंत शेष और चार हाथ। उसे ये कैसा व्यक्ति है, अमेरिकन लेडी थी, उसने हु इज दिस पर्सन, फोर हैंड्स सर्पेंट विद सो मेनी हुड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर चित्र इतना अच्छा है तो अंदर किताब कितनी अच्छी होगी, इस किताब में जरूर कुछ होगा। और उन्होंने वो किताब खरीदी और घर में आए, घर में आकर उन्होंने अपने हस्बैंड को दिखाया। अब देखिए हंसते हंसते कैसे बैंड बजता है उस हस्बैंड का, तो हस्बैंड का मतलब यही होता है जैसे हंसते हंसते बैंड बजता है। तो वो हस्बैंड को दिया, वो किताब देखा उसने, अरे ये कैसी किताब है, ये सब पिक्चर है, देखिए चार हाथ है इसके, बड़ा देखने में सुंदर लग रहा है, और ये कौन है ऊपर, ये सब सांप, इतने सारे के सब है, इतने सारे फन है इसके, इतने सारे हुड्स है, वेरी इंटरेस्टिंग। बोलता है कि अच्छा आज के लिए आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पढ़ता हूं। पढ़ना शुरू किया उनके हस्बैंड ने, सुनिए आज सुन के बड़ा आपको अच्छा लगेगा, पढ़ना शुरू किया पूरी रात उन्होंने किताब पढ़ी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा दुखी समझदार हो कि हमारे साथ ना हो जाए कहीं, हमारे हस्बैंड का बैंड ना बज जाए कहीं। तो पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, और सुबह जब हुआ तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, देखो यू आर स्टिल यंग, आपको तो और भी कोई मिल जाएगा, मैं अभी जा रहा हूं, मैं सामान पैक कर लिया है, मैं कुरियर में नहीं भेज रहा, साथ खुद लेके जाऊंगा, और मेरा मुझे रास्ता मिल गया, डेस्टिनेशन मिल गया है। और उन्होंने टेम्पल ज्वाइन कर लिया अमेरिका में, और खुद ही उन्होंने 6 से 7 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, और अमेरिका से इंडिया आ गए, इंडिया में आए तो श्रीधाम वृंदावन आए, और श्रीधाम वृंदावन में आकर उन्होंने हरिनाम शुरू किया, और वृंदावन धाम में उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनका नाम है श्रीपाद इंद्रा प्रभु, जिनको पूरा संसार जानता है कीर्तन के लिए। देखिए ये प्रभुपाद जी की किताबों का कमाल है, जिन किताबों को पढ़कर सबसे बड़े कीर्तनिया बन गए हो। कौन कहता है कि प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर लोग भक्त नहीं बनते, जो ऐसा कहते हैं वो खुद ही भक्त नहीं है, जो खुद ही इस तरह से जो कहते हैं इस तरह से किताबें बांटने से क्या होता है, वो स्वयं बहुत बड़े इल्यूजन में है, दे आर ए बिग 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 माया। ऐसा कभी ना सोचिए, मन में ये शंका मत लाइए, आचार्यों के स्टेटमेंट में शंका मत लाइए, शंका लाएंगे तो खुद ही शंका में हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। भले आपसे कितने बड़े ना बढ़े, प्रयास करिए कम से कम, एटलीस्ट बी ए प्रमोटर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते हैं तो। लेकिन अगर नेगेटिव अप्रोच रहेगा प्रभुपाद की बुक्स के लिए, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारा तो स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगा, गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। इसे प्रभुपाद ने 1972 में रामेश्वर स्वामी को एक लेटर लिखा, और उसने लिखा कि ईच एंड एवरी बुक डिस्ट्रीब्यूटर विल गो बैक टू गॉड एंड आई पर्सनली गारंटी दिस, देयर इज नो डाउट इन दिस। प्रभुपाद ने लिखा लेटर में, प्रभुपाद ने कहा प्रत्येक पुस्तक की तरह भगवान के धाम जाएगा, मैं पर्सनली गारंटी देता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। आपको इससे बड़ा क्या चाहिए आश्वासन बताइए, प्रभुपाद जो से महाभागवत स्वयं की वाणी से निकल रहा है ये बात कभी गलत साबित नहीं हो सकती। और प्रभुपाद ने कहा, फिर प्रभुपाद ने भक्ति विकास महाराज एक बुक लिखी थी एनेक्डोट्स ऑफ अ स्वामी, तो उस किताब में एक प्रभुपाद का एक कोट लिया उन्होंने, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आप ग्रंथों का वितरण पूरे जीवन भर करते रहेंगे, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स थ्रू, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स थ्रू आउट योर होल लाइफ, लॉर्ड चैतन्य विल पर्सनली कम टू डिलीवर यू, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आपको उद्धार करने के लिए आएंगे। और क्या चाहिए बताइए, महाप्रभु स्वयं आएंगे आपके पास। इसलिए कलयुग में संकीर्तन प्रोसेस है, चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षा सूत्र में संकीर्तन को ही जोर दिया है, ये भजन है हमारा संकीर्तन, संकीर्तन ही और भजन, इस बात पर कोई डाउट मत रखिएगा। तो इसलिए अगर हम देखें श्री जी गोस्वामी को उन्होंने लेटर लिखा 1579 में गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, और जानते लेटर में क्या लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर भेजा है श्री जी गोस्वामी को। ये हमें मिला था यशोमती रंगन फो की जो वाइफ है राधाकुंड माता जी, राधाकुंड माता जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा मैं, शी इज अमेरिकन लेडी, Norm Shimer be in 60s, late 60s, kah sakte hain. And she's distributing books for the last 45 years. 45 saal se book distribution kar rahi hai Mata Ji. Banta Ji nahi, Mata Ji ke liye tha. So aapko encouragement milega Mataon ko. 45 years she's distributing books. Delhi aayi thi wo. Ab dekhiye kitna attachment hai Prabhupada ke instruction se unko. Hai na? Hum log ko to matlab shama aayi thi. Chehra chupa lo kahin kone mein chup jao. Mujhe hai. वो माता जी को पार्किंसन हो गया, ब्लड कैंसर है उनको, लुकुमिया, तो वो इलाज के लिए आए थे, हमने उनका इलाज शुरू कर दिया था। मैंने कहा माता जी यहीं रहिए और हमारे भक्त आपको हेल्प करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, आप पूरा ठीक हो जाएंगे। तो गेस्ट हाउस में रहना शुरू किया, हफ्ते भर दवाई उन्होंने ली और तीसरे दिन उनका हाथ कामना भी बंद हो गया। अक्षय केशव प्रभु जानते हैं इस बार के में, वो उनका हेल्प कर रहे थे। तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी की डिवोटी इतना केयर कर रहे हैं उनके लिए। फिर एकदम वो बोले कि मैं वापस आना चाहती हूं वृंदावन, क्योंकि मेरी बेटी वहां पर है, ट्रीटमेंट में वही ले लूंगी। प्रभुपाद ने हमें मना किया है कि गेस्ट हाउस में ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहिए, गेस्ट हाउस में नहीं रहना चाहिए समय तक नहीं। प्रभुपाद ने कहा है कि हमें गेस्ट हाउस में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूं वृंदावन धाम में। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ब्रह्मचारियों से मैं सेवा ले रही हूं। और वो चले गए, उनको ब्लड कैंसर अभी भी है और वृंदावन भाई है पेड़ के नीचे अभी भी बुक स्टॉल लगा के बुक डिविजन कर रही है। वो उनको अपने बारे में चिंता नहीं है। शी इज वेरी मोर अबाउट प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन। क्या अटैचमेंट है ये देखिए धाम जाने का क्वालिफिकेशन। बातें तो हम सब कर रहे हैं लेकिन इस तरह का अटैचमेंट कहां हमारी। फिर हमने बोला उनको कि आपको हम गाड़ी में छोड़ देंगे वृंदावन धाम। हमारे पास गाड़ी हम छोड़ देते हैं आपको, क्यों आप कैसे जाएंगे इनको अकेले। बोलते नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रभुपाद का पैसा मैं खर्च नहीं करूंगी, एक गाड़ी में नहीं जा सकती मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। तो हमने बहुत पुश किया, उन्होंने कहा ठीक है मुझे आश्रम चौक तक छोड़ देना, वहां से मैं बस पकड़ लूंगी। एंड शी वेंट अलोन बाय द बस। दैट इज द मूड ऑफ श्रीमद् प्रभुपाद डिसाइपल। ये प्रभुपाद जी की शिष्य है, क्या उनके अंदर क्वालिटी है देखिए। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी हो गई है, जब तक हमारे पास सुविधा नहीं होगी हम उसे प्रचार नहीं करेंगे। दैट्स द स्पिरिट दे हैड। और उन्होंने बताया हमें कि प्रभुपाद के टाइम में जब बूट इश्यू करने जाते थे, टेम्पल से निकलते थे, हमारे पास कार्टन होते थे और हम लोग बोल लेते थे जब तक ये कार्टन खाली नहीं होगा मंदिर वापस नहीं आएंगे। दैट्स द स्पिरिट। और वो कार्टन खाली करके तब तक वापस पहुंचते थे। ये माता जी है, ब्रह्मचारी नहीं है, सन्यासी नहीं है, पर शी इज अ डिवोटी। शी इज अ डिवोटी। इसे भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ये रहस्य क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। इसलिए भक्त बनना बहुत जरूरी है। भक्त का मतलब होता है सेवा। सेवा से जो है भक्त की पहचान होती है और सेवा ही हमारा स्वरूप है और कोई स्वरूप नहीं है। यही हमारा स्वरूप है और ये सबसे बड़ी सेवा है। प्रभुपाद को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है ग्रंथों को बांटना। हमारे महाराज कहते हैं दिस इज द शॉर्टकट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में जाने का हम सब शॉर्टकट चाहते हैं, इसलिए कई बार लोग भाग कह रहा था गुण वृंदावन, कहीं कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई भाव मिल जाए, हम लोग पहुंच जाएंगे धाम जल्दी से, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। तो महाराज कहते दिस इज द शॉर्टकट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ग्रंथों को पढ़िए और ग्रंथों का वितरण करिए, बहुत जल्दी आप धाम चले जाएंगे, इसी जन्म में वापस जाएंगे, बैक होम बैक टू गॉड। तो इसलिए इसको बहुत आप सस्ता बोल दीजिएगा ग्रंथों के वितरण को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन आवर मूवमेंट। प्रभुपाद की जितने भी चिट्ठियां हैं, जितने भी कन्वर्सेशन है, लेटर्स है, अगर प्रभुपाद ने किसी एक सेवा में जोर दिया है तो सबसे ज्यादा प्रभुपाद ने जोर दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रभुपाद सबसे अधिक जोर दिया है। इसे ऑल्टर से पुजारियों को, या गार्ड जो खड़ा हुआ है, या प्रीचर जो टेम्पल के है, या हमारे जो कंग्रीगेशन है, हमारे जो टेम्पल से बुक्स निकलती है, हमारे लास्ट टाइम भी काफी गलत बैठे थे तो कंग्रीगेशन के द्वारा 60% हमारे टोटल बुक्स है, टोटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ पिछली बार, हर साल 60% बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कंग्रीगेशन डिवोटीज के द्वारा, आप इन फैमिलीज के द्वारा। 40% ही हम लोग करते हैं ब्रह्मचारी से, 60% किया जाता है हाउस होल्डर्स के द्वारा। और फरीदाबाद एक टेम्पल है जिसमें ब्रह्मचारी है ही नहीं, टेम्पल में भक्ति नहीं है, उनके चार भक्त हैं और चारों पुजारी है, एक ब्रह्मचारी है शायद वो भी, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। चार पुजारी है, एक ब्रह्मचारी है और एक ब्रह्मचारी जो है वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो कौन करता है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन? लास्ट ईयर दे डिस्ट्रीब्यूटर 1,10,000, 1,10,000 ग्रंथों का वितरण किया फरीदाबाद टेम्पल ने। किसने? सारे कन्वेंशन के भक्तों ने। और इस साल उन्होंने प्लेस किया है 1,65,000 बुक्स। मंदिर में भक्त नहीं है, टेम्पल खाली है, चार पुजारी है, आधा के देख लिया फरीदाबाद टेम्पल, सो सच अ बिग टेम्पल, बट वी आर ओनली 4 डिवोटीज है, वो सारे पुजारी हैं। तो क्या ब्रिटिश, किसे ब्रिटिश विश्व होता है? प्रभुपाद ने कहा मेरे ग्रंथों का वितरण होता है भक्तों के उत्साह से, सजाने से नहीं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर उनको जी गोस्वामी के लेटर में क्या लिख रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य का, नरोत्तमदास ठाकुर का, श्यामानंद प्रभु का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर भेज रहे। जैसे क्या क्या बुक्स बताई उन्होंने, स्कोर से नहीं बताएंगे वो टाइम हो जाएगा। जैसे बुक्स है भागवतम, वैष्णव तोषणी, ज्ञानदास के गीत, गोविंददास के गीत, नरोत्तमदास ठाकुर की प्रार्थना, भक्ति राम सिंधु, चैतन्य भागवत, लोचनदास ठाकुर की चैतन्य मंगल, हरिभक्ति विलास, मुरारी बुद्ध की कर्चा। तो ये सब ग्रंथ बांटे हैं इन तीन आचार्यों ने, उसका स्कोर भेज रहे हैं नजीब गोस्वामी को। नरोत्तमदास ठाकुर लेटर में लिख के भेज रहे हैं स्कोर हमारा। और उसके बाद जब लेटर फिनिश हो रहा है तो उन्हें क्या बात लिखी है जिसे प्रभुपाद जी के भविष्यवाणी कर दी उन्होंने, बड़े ध्यान से सुनेगा। ये राधा कुंड माता जी के बारे में बता रहे थे, हम बता गए राधा कुंड माता जी ने यह लेटर भेजा था, मेल भेजा था, तो ये बंगाली में है ओरिजिनली, तो मैं ट्रांसफर करा के भेजा। अब देखिए ध्यान से क्या है लिख रहे हैं नरोत्तमदास ठाकुर, अंटिल वी आर एबल टू डेवलप अनदर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रिंट द बुक्स ड्यू टू द डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग बुक्स बाय हैंड विच इज बींग नेग्लेक्टेड मोस्ट ऑफ अवर बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम विल बी पोस्टपोन्ड। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई तकनीक नहीं है, मशीन नहीं है, और सब कुछ हमें हाथ से लिखना पड़ता है। जैसे एक महापुरुष के पार्षद थे विजयपुर, उनका नाम महापुरुष दिया था रत्न भावो, वो क्या करते थे सब ग्रंथों को कर नकल उतारते थे और इतना बढ़िया नकल करते थे ऐसा लगता कि एक और किताब छप गई। तो उन दिनों किताबों का नकल करना पड़ता था, हाथ से उतारना पड़ता था, कोई लॉजिस्टिक नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ट्रक नहीं था बुक्स पहुंचाने के लिए, बैल गाड़ी में पहुंचाना होता था। और एक मंदिरों में किताबें रखी जाती थी, वहां जाके अगर इंटरेस्टेड है तो किताब की नकल कर सकते हैं, फिर जाके वितरण होगा। और ऐसा नहीं है कि वहां प्लेन है या ट्रेन है, कोई बस है, कुछ नहीं है, सब पहले संगे आपको करना पड़ेगा। तो फिर भी उसके बाद भी नरोत्तमदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, नरोत्तमदास ठाकुर इस लेटर में प्रभुपाद के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वी आर श्योर दैट वन डे सम मैग्नानिमस पर्सन विल कम एंड डेवलप द मूवमेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु distributing books all over the world. Until then, what will be persons who are poor, bereft and abominable do? But they being here, lachar, gareeb, hum jaise log mein kya kar sakte hain? Lekin bahut hi jald hi mahapurush ke is andolan mein, mahapurush ke andolan ko pure sansar bhar mein phailane ke liye ek mahan vyakti aayega, ek mahan bhakt aayega jo granthon ke vitran ke madhyam se pure sansar bhar mein prachar karega. Taaliyan bajaiye Prabhupada ke liye. फिर क्या लिखते हैं, देखिए लास्ट में लिखिए, बहुत अच्छी बात लिखिए, कार्तिक हो गए ना, सुनिए कार्तिक के बारे में बोलना अच्छा है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिस्कसिंग द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड्स इंकार्नेशन, भगवान के अवतारों के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में वर्णन करने का क्या लाभ, वर्शिपिंग द लॉर्ड डीटी विग्रह की सेवा करने का क्या लाभ, और कृष्ण की लीलाएं जो है उसका संगीतमय वर्णन करने का क्या लाभ, चैंटिंग द लॉर्ड्स होली नेम ऑन द बीच जब भी मामला में जब करने का क्या लाभ, अगर हम इतनी कम संख्या में ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। नरोत्तमदास ठाकुर कह रहे हैं इस सबका क्या फायदा अगर ग्रंथों का वितरण कम हो रहा है। देखिए दिस इज एक्चुअली नरोत्तमदास ठाकुर का ये मूड है, ये हमारा आचार्य का मूड है, और यही भक्तिराव ठाकुर ने किया, यही हमारे प्रभुपाद ने किया, गुरु भारत ने किया। दिस इज द मूड ऑफ आचार्य। प्रभुपाद कहते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फैमिली बिजनेस, ये हमारा फैमिली का बिजनेस है, और इसी बिजनेस को कौन इनहेरिट करेगा, वही भक्त इनहेरिट कर सकता है जो अपने पिता को या दादा को एज इट इज फॉलो करेगा, उसी को ही संपत्ति मिलेगी। परंपरा की संपत्ति किसको मिलेगी, जो वास्तव में उस मूड को इनहेरिट करेगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अनुकूल है कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है, जब हम अनुकूल भाव से कृष्ण भावना का अनुशीलन करते हैं मन वाणी और शरीर से। तो अनुकूल का मतलब क्या है, अनुकूल का मतलब यह है जो हमारे आचार्यों ने कहा है उसी बात को दोहराना है, नई बात नहीं जोड़नी है, अपना कोई नया सिस्टम नहीं बनाना है, हमें नया संप्रदाय नहीं शुरू करना है, हमें वही बोलना है जो हमारी गुरु परंपरा में बोल गए हैं आचार्य। अगर उन्होंने हमें कहा है ग्रंथों का वितरण करने के लिए, ग्रंथों पर वितरण जोर दिया है, वितरण पर जोर दिया है, तो वही बात हमें आगे प्रेजेंट करनी है, उसे तोड़ मरोड़ मत करिए प्लीज, ये याद रखिएगा। इसलिए ये जो भक्ति वेदांत परपोर्ट्स है दिस इज रियली अमेजिंग। अभी देखिए हमें एक जगह से बड़ी अच्छी सूचना मिली, आपको दे हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी हमारे पास, इसमें हमने आप सबके लिए, हम सबके लिए भी, और ये बड़ा अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है श्रील प्रभुपाद के पुस्तक वितरण के 42 तरीके 42 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट श्रील प्रभुपाद बुक्स। अब ये नहीं कह सकते हम तो जानते नहीं है कैसे करें, तो ये घर घर पहुंचेगा ये कागज, घर में बैठ के बड़े ध्यान से बड़े आराम से पढ़िए कैसे कैसे मैं ग्रंथों को बांट सकता हूं। हमने निकाला बड़े मुश्किल से कहीं से, इन्हें बताएं कहां से निकाला है। 42 तरीके हैं ग्रंथों को बांटने के लिए, इसकी फोटो कॉपी करके आप मुझे दे दीजिए फिर सबको वितरण करिए, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो ये सब जो है व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि हमारे पास हथियार हमारे पास हो, वेपन्स तैयार हो, प्रभुपाद ने कहा दिस इज अवर ग्रेटेस्ट वेपन, सबसे बड़ा हथियार है हमारे ग्रंथ और ग्रंथ। प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज रशिया पहली बार गए थे 75 में, तो वहां बेसमेंट में प्रिंटिंग प्रेस बनाया था क्योंकि उस समय कम्युनिज्म बहुत स्ट्रांग था रशिया में, नो रिलीजियस मूवमेंट नथिंग, वहां प्रिंटिंग प्रेस नहीं कर सकते उठा के अंदर कर देंगे महाराज। लेकिन तब से लेके प्रभुपाद के कहने पर 75 में गए थे और सूट वूट पहन के गए फर्स्ट क्लास है ना, और महाराज वहां भी गए एक बेसमेंट में गए और बेसमेंट में देखा प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन को देखकर महाराज के आंखों में से आंसू आ गए और महाराज ने प्रिंटिंग मशीन को देखकर धन्यवाद किया और उसमें से जो ईद था उन्हें अपने माथे पर लगाया। हरे राम, उनसे पूछा गुरु महाराज महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो प्रिंटिंग मशीन है, किसी बात भी थी। प्रभुपाद महाराज कहते हैं ये प्रिंटिंग मशीन है दिस इज एज गुड एज अ बीटी, क्योंकि इस मशीन के माध्यम से प्रभुपाद की ग्रंथों की छपाई हो रही है और इसका वितरण होगा पूरे रशिया में। तुम्हारे के प्रयास से उन भक्तों के प्रयास से जिन्होंने खतरा लिया रिस्क लिया, आज देखिए रशिया में इतनी बाढ़ आ गई है भक्तों की कि दिल्ली से इंडिया से भी अभी प्रचार होने लगा है अभी कई कई जगह रशिया में। ये कैसे हो पा रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये होता है जब स्पिरिट होता है कि हमें गुरु परंपरा को खुश करना है, आचार्यों को खुश करना है और उनको खुश करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक स्टोरी और सुना दें, चलो एक स्टोरी और सुना देते हैं आपको। एक बार एक भक्त थे, बताया था शायद आपको, मैं मिलिट्री में कर्नल थे, नहीं सुनिए अभी, वो मिलिट्री में कर्नल थे क्योंकि रशिया में सिस्टम यह है कि आपको एक साल या दो साल के लिए जाना ही पड़ेगा आर्मी में ट्रेनिंग के लिए। अच्छा है हमारे जैसे भी फुल टाइम बनने से पहले सबको और मेहनत की रशिया आर्मी ट्रेनिंग मिल जाए मजा आ जाएगा। तो वहां पे आर्मी ट्रेनिंग होती है, वहां कर्नल थे, उसमें दो सोल्जर थे, उनको प्रभुपाद जी की किताब मिली और वो पढ़ते रहते थे। वो कर्नल आया, उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो ये, उन्होंने कहा कि हम किताब पढ़ रहे हैं। क्या किताब है, गीता है, कहां से मिली आपको, किसी भक्त ने दिया। बोलते जानते नहीं ऐसा नहीं करना यहां पे, तो वो जान डर गए, बोलते आप ही पढ़ के देखो ना ये बहुत अच्छी किताब। तो कर्नल का ठीक है जाओ देखता हूं मैं, तो वो किताब पढ़ने लगे, नहीं उन्होंने पढ़ी नहीं उन्होंने किताब पहले दिन, तो ये बार बार उसे पूछे आपने किताब पढ़ी आपने वो किताब पढ़ी आपने वो किताब पढ़ी, अरे यार दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, वो पूछते रहते हैं किताब पढ़ी किताब पढ़ी। तो फिर जाकर उन्होंने कहा ठीक है पढ़ता हूं मैं, तो उन्होंने पढ़ लिया, तो उन्होंने क्या किया सिर्फ अनुवाद पढ़ा गीता का। अब ये जो सोल्जर थे उन्होंने कहा पढ़ लिया आपने, हाँ मैंने पढ़ ली। उस दिन रात को सपने में प्रभुपाद आए होंगे और प्रभुपाद ने गला पकड़ा सपने में आप, अरे तुम झूठ बोलते हो, तुमने मेरी किताब पढ़ी है ठीक से, तुमने सिर्फ अनुवाद पढ़ा, मेरा तात्पर्य नहीं पढ़ा तुमने, तात्पर्य नहीं पढ़ो। तो वो कर्नल घबरा के रात को रोके खड़ा हो गया, ये क्या हो गया, कौन आगे बुरा आगे, और देखा उन्हीं का फोटो है गीता में फ्रंट पेज पे। तो वो तात्पर्य के साथ पढ़ने लगे, तात्पर्य के साथ क्या पढ़ा उन्होंने कि भक्त बन गए वो कर्नल। हरी 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 बड़े प्रचारक हैं और हाल ही में उनका संन्यास भी हुआ, उनका नाम है भक्ति अनंत कृष्ण गोस्वामी, जो पहले अशोक प्रभु थे और हर एकादशी में निर्जल रखते हैं और 192 माला करते हैं 192 राउंड्स। यह है प्रभुपाद जी के ग्रंथों का चमत्कार। देखिए भक्ति चारू महाराज कैसे किताब कैसे भक्त बने, भक्ति चारू महाराज को जर्मनी में प्रभुपाद जी कौन सा बुक मिला जानते हैं, ऑन द वे टू कृष्णा, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ के भक्ति चारू महाराज जर्मनी से कहां आ गए, कलकत्ता आ गए, कलकत्ता से मायापुर गए, मायापुर जाके प्रभुपाद से मिले और 3 महीने के अंदर प्रभुपाद ने उनको हरिनाम ब्राह्मण दीक्षा संन्यास भी दे दिया। 3 महीने के अंदर भक्ति चारू महाराज को संन्यास मिला प्रभुपाद से और 3 महीने पहले वो जर्मनी में थे और नेक्ट्रॉन डिवोशन उन्हें पढ़ा था। इसी तरह से जर्मनी के एक और भक्त हैं पृथ्वी प्रभु प्रभुपाद के शिष्य, उनको मिला था ईशोपनिषद, ईशोपनिषद भी बहुत पढ़ा है, ईशोपनिषद पढ़ा उन्होंने, एक भक्त ने दिया पूरी रात पढ़ा, सुबह समान तय किया उन्हें चले। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, डरिए मत आप घर में रहिए, ایسا نہیں کہ آپ سوچیں بھائی ہم پڑھیں گے تو ہم بھی یہیں آ جائیں گے. پھر آپ کو گھر میں ہی رہنا ہے, لیکن گھر میں اگر یوا پیڑھی کے لوگ ہوں ان کو بھیج سکتے ہیں آپ. بہت تو اس لیے گرنتھوں کو پڑھنا اور پڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا, اور کوئی پرچار نہیں کر رہا ہے اسکان کے علاوہ. کرشن بھاونا کا کوئی بھی پرچار نہیں کر رہا ہے اتنی بھاری تعداد میں, کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, کیول اسکان ہی کر رہا ہے کیول. اور اسکان بھی اگر بند کر دے گا تو بند ہو جائے گا پرچار. مہاپربھو نے جو ہے یہ کرپا وشیش روپ سے اسکان کو دی ہے, اور پراپر ایک پرپورٹ میں لکھ رہے ہیں کہ اس آندولن کا نرکشن پراپر لکھ رہے ہیں تاپا سی سی میں, اس آندولن کا نرکشن سوئم شری چیتنیہ مہاپربھو کر رہے ہیں. This movement is being personally supervised by Shri Chaitanya Mahaprabhu. تو اس لیے آپ کو ہمت بنائے رکھیے. اب بس آپ اٹھتے ہی یہی چنتن کریے صبح صبح منگل آرتی سے پہلے, جب برہم مہورت میں جیسے اٹھیں تو آپ کو کیول ایک ہی چنتن ہونا چاہیے کہ آپ میں کسی پروپر کی بکس کو بانٹوں گا, گرنتھوں کا وتر کیسے کروں گا. رات کو سونے سے پہلے بھی یہی سوچیے, صبح اٹھتے ہوئے بھی سوچیے. اور آپ آپ کو ایک بہت سندر رش پہن دیا جا رہا ہے جو لے کر آئے ہیں آپ کے لیے, دیکھیے یہ سیمپل ہے. لیکن آپ چنتا مت کریے, ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے, آپ سب کو فری دیا جائے گا, رکنی شو دیں گے آپ کو, ودھائک کریں گے کس کس کو دینا ہے کر کے. اور اس میں لکھا ہے اف یو وانٹ پلیز می دین ڈسٹریبیوٹ مائی بکس, اگر آپ مجھے پرسن کرنے چاہتے ہیں تو گرنتھ باندھیے. پراپر نے بولا ہے, یہ ہم نے لکھا ہے. اس میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو نرسنگ بھگوان کو آفر کیا. صبح نرسنگ آرتی ہوتی ہے نا تو ٹیمپل میں ہمارا دارونا ہے نرسنگ بھگوان کا ٹیمپل ہال میں, تو نرسنگ آرتی ہوئی اور نرسنگ آرتی ہم نے کی لیمپ سے پورا آرتی کیا ہم نے. ویسے آرتی ہوتی نہیں کی کیونکہ وہ ڈائرم ہے انسٹال ہوتی نہیں ہے, لیکن اس اسپیشلی ہم نے کیا نرسنگ آرتی کی, پورا لیمپ گھمایا. اور اس کے بعد یہ جو بینڈ ہے نرسنگ بھگوان کے ہاتھ میں دیا ہری بار, اور نرسنگ بھگوان کے ہاتھ دینے کے بعد ان کا پرشاد ملا مہاپرشاد. اس کے بعد یہ مہاپرشاد نے کس کو دیا؟ شری پروپاد کو دیا. ہری بار ہری بار. میں آرتی کر رہے تھے ان کے پاس ہم گئے, ایک بھکت گیا, ان کا گرو آج یہ نرسنگھ بھگوان کا پرشاد ہے, پروپاد جی کو بھی دیا گیا, یہ مہان پرشاد ہے, یہ سنکیرتن پوتر ہے, یہ سنکیرتن پوتر ہے. اور ہمارے گرو مہاراج نے بھی اس کو پہن لیا, ہمارے گرو مہاراج نے بھی اس کو پہن لیا. اور سمجھ لیجیے سنکیرتن پوتر اگر آپ پہنیں گے, جیسے ہی آپ پہنیں گے آپ کے شریر میں کرنٹ دوڑنے لگے گا, اور اسی سمے آپ کتاب لے کے سڑک میں بھاگیں گے. تو اس کو سادھارن مت سوچیے, یہ سادھارن مت سوچیے, یہ 2015 دسمبر کا سنکیرتن پوتر میراتھن ہے. یہ سنکیرتن پوتر ہے آپ کے ہاتھ میں. نرسنگھ پوتر تو دیکھا ہم نے, سنکیرتن پوتر بہت ویئر ہے اور آپ کو یہ ملے گا. اور جو بڑے بھاگیشالی جیو ہیں جو گرنتھوں کا وتن کریں گے ان کو یہ ملے گا. ہرے کرشن. تو دھنیہ واد. اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب پلیز اسکرین بنائے رکھیے بک ڈسکرپشن کا, کیول اس مہینے نہیں پورے وش پورے سال, پورے سال کوئی بھی سیوا ہمارے پاس, بھائی مندر بنانا ہو, یوتھ پروگرام ہو, کنجریشن پروگرام ہو, ڈی ڈی ورشپ ہو, پرشادم ڈسٹریبیوشن ہو, مندر کی صفائی ہو, کوئی بھی سیوا ہو, سبھی سیواؤں کے مادھیم سے ہمیں گرنتھوں کا وتر کرنا ہے. یہ اس موومنٹ کا پرپس ہے اور کوئی پرپس نہیں ہے, اور کوئی پرپس نہیں ہے. پرابھوپال کا ایک ہی پرپس ہے, پرابھوپال کو بھی گرو مارنے کا. واسطے میرے گرو مارا تو یہ کہتے تھے گرنتھوں کو چھاپے اور وتر کرے. مندر تو میں نے بہت بعد میں بنایا جب آوشیکتا پڑی, میں تو شروع سے گرنتھ ہی بانٹ رہا تھا. یہ ہسٹری ہے اس موومنٹ کا. تو اتہاس کو بنائے رکھے, اور آپ کا نام بھی اتہاس جو ہے پکارے گا, یاد رکھے گا اتہاس کہ ایسے سے بھکت آئے تھے تو پروپال جی کے گرنتھوں کو بانٹنے کے لیے انہیں دن رات ایک کر دیا. ہسٹری ول ریمبر یو. اتہاس آپ کو یاد کرے گا, ہم بھی آپ کو یاد کریں گے, بھگوان بھی آپ کو یاد کریں گے, سب آپ کو یاد کریں گے. اسے تیار ہو جائیے, آپ سے شروع ہو جائیے اگر نہیں ہوا ہے. ہرے کرشن ہرے کرشن. اور دیکھیے ہمارے پرم سے بھاگ ہے کہ پوجی آ جائے, اور پوجی جو بول رہے تھے بول نہیں رہے ہیں, پریکٹیکلی کر بھی رہے ہیں. پوجی کا سواستھیہ پچھلے 6-7 مہینے سے ٹھیک نہیں تھا, گلا خراب تھا, آواز نہیں نکل پا رہی تھی. اور پھر بھی دیکھیے کتنے اتساہ لوگوں کو ہمارا اتساہ بڑھایا. تو ہم سے کتنے بھکت لوگ پروپال نے بولا ہے کہ جو ایک پستک وترن کرے گا بھگوت رام نشچت روپ سے جائے گا. کتنے فوج جانا چاہیں گے؟ اور پروپال کو جگہ دیکھنا چاہتے ہیں. پوجی نے بتایا ہمیں کیا کرنا پڑے گا, گرنتھوں کو بانٹنا پڑے گا. اس سے اچھا اوسر اور کیا ملے؟ دی شارٹ کٹ ٹو دا اسپرچل ورلڈ. اور بھاپی جگہ میں جانے کا سب سے چھوٹا راستہ کیا ہے؟ پرپاد کی پسکوں کو ہم بانٹے. تو اس شاپ کلاش مندر میں بہت کتنا ٹارگیٹ لیا آپ لوگوں نے؟ 4.5 لاکھ,
सवा चार लाख पुस्तकें दिसंबर के महीने में, और ये हमेशा अपने टारगेट को क्रॉस करते हैं। और आप देखिए फरीदाबाद मंदिर में कोई भी टेंडर कर्मचारी नहीं है, पिछले साल 1,10,000 भगवत गीता पूरी कॉम्बिनेशन की ड्यूटीज ने किया, और इस साल उन्होंने पेज किया 1,65,000 साल, और उनका भी ये रिकॉर्ड है कि जो वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं, दैट इज अ रिकॉर्ड। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग, और आप सब बहुत लोग भी बहुत उत्साह से हर बार जुड़ते हैं। पिछले साल श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों ने 2,25,000 भगवत गीता का वितरण किया, उसमें से 1,25,000 का वितरण किया था पारिवारिक घर में रहने वाले भक्त कांग्रेशन के डिवोटीज ने, और 1,00,000 का वितरण किया था इस्कॉन यूथ फोरम और ब्रह्मचारी ने मिलकर। तो इस साल भी हमने टारगेट वही रखा है 2,25,000, ठीक है, ज्यादा टारगेट नहीं है। इस टारगेट को हमने बढ़ाया नहीं, डबल करना चाहते थे नहीं, क्योंकि रोहिणी टेम्पल गंडा इसलिए बोला इतने 225 ही रखेंगे, तो 225 का टारगेट है। लेकिन हमें कभी भी जब पिछले साल हुआ इस साल भी हो ही जाएगा रिलैक्स नहीं करना, क्योंकि समय बहुत कम रह गए हैं, कार्तिक अभी फिनिश हुआ है, हमारे पास मुश्किल से 30-35 दिन है, और अगर हम एवरेज निकालेंगे 2,25,000 गीता 30 दिन में प्रतिदिन कितनी बढ़ी, 7,000 से ऊपर लगभग है ना। तो इट्स अ वेरी टफ टारगेट, सबको लगातार जुड़ना पड़ेगा, बुक्स आ चुके हैं, टाइम ऑफ पड़े हैं हमारे गोडाउन के अंदर, गोडाउन में ना ही फटे अपने अपने घर में ले जाइए। सबसे पहला तरीका यह है कि हम पुस्तक वितरण करें, इन पुस्तकों को अपने घर में ले आइए, ड्राइंग रूम के अंदर पूरा ड्राइंग रूम भर दीजिए पुस्तकों से, किसी और के बैठने की जगह ही ना हो, ताकि बाय फोर्स वी आर फोर्स टू टेक आउट द बुक्स एंड गो आउट। कृपया कर किताबें लीजिए, बेसमेंट में हमारे श्रील प्रभुपाद भवन के बेसमेंट में बुक्स पड़ी हैं, और किताबें लिखे प्रभुपाद से प्रार्थना करके सब मिलकर हम शुरू करें। ये बैंड भी आ गए हैं, बैंड हमें डाल दिया है, ऑफर हो चुका है, और ये सबको मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा, सुबह सुबह जैसे हम उठेंगे आप पानी पियेंगे डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, ब्रश करेंगे डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, आरती करेंगे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, माला करेंगे डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, तो उसके बाद भी हम बैठेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सुंदर अवसर है हमारे पास प्रभुपाद की कृपा को प्राप्त करने के लिए, आचार्यों की कृपा को प्राप्त करने के लिए। फैमिली बिजनेस करेंगे तभी फैमिली से जुड़ेंगे, और तभी हम फैमिली के स्थित सदस्य कहलाएंगे, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे इस मोहन प्रभु जी का, उन्होंने पूरा हम सबका उत्साह बढ़ाया। हरे कृष्ण, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।